संध्या देव की ओर देखती है। देव बोलता है, वो तुमने कहा था ना कि कुछ भी करो, तो मैंने कर दिया। वो दादी छत पर बालों में तेल लगा रहे थे, तब मैं यहाँ सबके साथ बैठा था, तो जान तो मान नहीं रही थी, तो तुम्हारी हाँ के लिए मैंने फ़ोन का बहाना बनाकर सीढ़ियों के पास जाकर तेल वहाँ ऊपर गिराया और सबके साथ आकर बैठ गया। तभी जब दादी आए और गिर गए। क्या तुमने किया वो सब? गुस्सा करते हुए। गुस्सा नहीं जान, अब तुम्हें तो पता है मेरे लिए तुम्हारे जितना ज़रूरी कोई नहीं, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तो अब बताओ क्या जवाब है? अभी दादी, फिर मुझे मत कहना देव तुमने किया है, बोलो। संध्या देव की ओर देखते हुए सोचती है, देव कुछ भी कर सकता है, दादी को भी नहीं छोड़ा। नहीं, किसी को तकलीफ नहीं होने दे सकती संध्या, तू चाहे तुम्हें देव के साथ सब सहना पड़े। क्या सोच रही हो, नहीं चलोगी? नहीं देव, हम चलेंगे, जब कहोगे तब चलेंगे, हाथ जोड़ते हुए। नहीं देव, अभी तुम कुछ मत करना प्लीज, कुछ मत करना। ओके जान, तुम मना नहीं करना मुझे अपने देव दीक्षित को, संध्या के आंसू पोंछते हुए। नहीं जान, रोना नहीं, ओके। अब हॉस्पिटल चले, पहले वादा तो करो, ये बात पता नहीं चले कि किसी को मैंने किया है, वरना दूसरा तीसरा नंबर किसका हो मुझे भी नहीं पता। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा देव। तभी ऋषि जी, नीतू जी और नीलू आ जाते हैं। संध्या, पापा, मम्मा, दादी कैसे हैं? भाभी, दादी ठीक है ना? पापा कहाँ हैं दादी? देव, हाँ पापा कहाँ हैं दादी, ठीक तो है ना? देव की ये बातें सुनकर संध्या देव की ओर देखती है। तभी रंजन कंपाउंडर के साथ दादी को लाकर फर्श पर छोड़ देता है और वो चले जाते हैं। संध्या, भाई, दादी, रंजन रोते हुए जमीन की ओर इशारा करते हुए। संध्या, हमारी दादी। एक्चुअली दादी को सर पर इतनी चोट लग जाती है कि हॉस्पिटल पहुंचते ही दादी की सांसें रुक जाती हैं। नहीं नहीं कहते संध्या रोते हुए अपनी चेयर दादी के पास करके नीचे चेयर से संध्या गिर जाती है और दादी कहते हुए दादी के सीने पर सर रखकर रोने लगती है। सब दादी के चले जाने से दुखी होते हैं। देव, संभालो संध्या खुद को, लगता है दादी के हाथ का तेल पर फिसल गए और काफी चोट की वजह से हमें छोड़कर चले गए, संभालो खुद को। सब रो रहे होते हैं। संध्या को अंदर से देव पर इतना गुस्सा आ रहा होता है, पर बेबस की फिर किसी को ना खो दे, इसलिए सबको बताना चाहते हुए भी कि ये देव ने किया है, नहीं बता पाती है। दादी के दाह संस्कार के दो दिन बाद ही देव संध्या को घर ले जा रहा हूँ सबसे कहता है। संध्या भी देव के कहने पर बोल देती है, हाँ यहाँ रहूंगी तो दादी की याद सताएगी मुझे, ले चलो देव यहाँ से, बोलती है। देव अक्षित से भी संध्या को ज्यादा मिलने नहीं देता है और न संध्या उस वक्त देव के डर से किसी को कुछ कह पाती है, और देव संध्या को घर ले आता है। अक्षित को भी दादी के चले जाने का बहुत दुख होता है, क्योंकि दादी के करीब सबसे ज्यादा अक्षित और संध्या ही तो थे। अक्षित जिन्हें गर्लफ्रेंड कहता था और संध्या अक्षित, दोनों मौज मस्ती दादी के साथ खूब करते थे। अक्षित के वापस मुंबई जाने के बाद भी अक्षित को दादी की याद सता रही होती है और संध्या कैसे रह रही होगी, क्या हाल होगा, अक्षित सोचता है, पर चाहकर भी संध्या से बात अक्षित नहीं कर सकता है। देव का रूम, अब तो दादी को गए 5 दिन हो गए जान, अभी भी उसी बात को लेकर बैठी हो, देव ने कहा। संध्या देव की कॉलर पकड़ते हुए, क्यों छीना मुझसे मेरी दादी को तुमने देव, क्यों, क्यों किया ऐसा, रोते हुए। देव अपनी कॉलर छुड़ाते हुए, ये मैंने तभी किया जब तुमने खुद को मुझसे छीन लेने की बात की संध्या, और अब ये रोना बंद करो, समझी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं ऑफिस से आऊं तब तक ये सब बंद आना चाहिए। और देव चला जाता है। तभी दीपाली आती है, भाभी, और संध्या उसके गले लगकर रोती है और दीपाली कहती है, काश आपने अपना फैसला ना बदला होता, ना आते इस घर में भाभी, माफ करना मैं आपकी चाहकर भी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। देव भैया कुछ भी कर सकते हैं, हम ज्यादा अपने हैं उनके, तो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, और उसे उन्हें वैसे भी मतलब नहीं, दीपाली ने बोला। संध्या, देव हमेशा ऐसे थे। दीपाली, जिद, चाहत, अपनी मर्जी, खुद को सब समझना, पर ऐसा रंग भी होगा ये ना सोचा था, इसलिए आपसे यही कहूंगी, कभी ना मत करना उन्हें, वरना न जाने किस किस की जिंदगी नरक बना दे। आप उनकी ऐसी इकलौती चाहत बन गई हैं जिसके लिए वो पूरी दुनिया मिटा सकते हैं, कहकर दीपाली भी रोते हुए वहां से चली जाती है। संध्या देव के बारे में सोचते हुए कि कभी जिसकी दीवानगी से मुझे प्यार था, अब देव ने वो प्यार मेरी चाहत को नफरत बना दिया, मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया, कान्हा जी ऐसा तो नहीं मांगा था मैंने, किस बात की सजा दे रहे हो मुझे। और देव उसी दिन आकर अपने रूम में कैमरा लगा देता है, जिसलिए उसे संध्या की हर खबर रहे और संध्या अपने किसी से बात ना कर सके। फिर संध्या की हालत ऐसी हो गई कि संध्या अपने ही रूम से बाहर ना जाती थी, खुद को देव को ही सौंप देती है। अपनों को खोने का डर संध्या को ऐसा करने पर मजबूर कर देता है। ये सब हो जाता है संध्या की जिंदगी में, जिससे संध्या की लाइफ इतनी बदल जाती है। फ्लैशबैक एंड। तभी देव बाथरूम से आ जाता है और संध्या सोचना छोड़ देव की ओर देखती है, ठीक हो? चलो आज सो जाओ, कल दिल्ली जाना है ना? थैंक्स देव। और देव लाइट ऑफ कर देता है और जाकर सो जाता है, संध्या रूम के अंधेरे की ओर देखते हुए। इससे भी ज्यादा अंधेरा है तेरी जिंदगी में संध्या, कैसे निकलेगी अब इन सब से, यहाँ दम घुटता है तेरा, अब तो मौत की तमन्ना भी करूँ ना तो देव मुझे मौत ना आने दे, यही घुट घुट कर रह जाएगी संध्या तू। और संध्या खुद से एक सवाल करती है, क्या तू वही संध्या है? और आंखें बंद करके संध्या सो जाती है क्रमशः।